हनुमान विशाल समुद्र को पार कर रहे थे, तभी भयानक सुरसा उनके मार्ग में आ गई। उसका विशाल मुंह देखकर हनुमान भी चकित थे। वो हनुमान को अपना भोजन बनाने को गर्जी, किंतु सच तो ये था कि देवताओं ने हनुमान की शक्ति परीक्षा के लिए उसे भेजा था। वो हनुमान पर झपटी, पर हनुमान शांति रहे और उन्होंने सुरसा से प्रार्थना की।
देखो, मैं श्री राम का सेवक हूँ और उनके कार्य के लिए लंका जा रहा हूँ। यदि तुम मुझे खा जाओगे तो मैं प्रभु का कार्य कैसे पूर्ण कर सकूंगा?
कौन राम के दरबार? मुझे भूख लगी है, तुझे खाऊंगी।
हाँ हाँ, तुम मुझे अवश्य खा जाना। मैं तो थोड़ा समय चाहता हूँ। सीता माता की सूचना प्रभु श्री राम को देकर मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए स्वयं आ जाऊंगा।
नहीं, पर मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं तुझे अभी इसी समय खाऊंगी।
इतना बड़ा मुंह क्यों खोल रही हो?
निगल जाऊंगी तुझे पूरा का पूरा।
तो ठीक है, निकल सको तो निकल लो। जय श्री राम।
ओ, तो तू अपना शरीर बढ़ा रहा है। तू अपना शरीर कितना भी बढ़ा ले, मेरे मुंह से बड़ा नहीं हो सकेगा।
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। सतयोजन ते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा।
अरे, ये तो अब छोटा ही होता जा रहा है।
अरे अरे, अरे, अरे कहाँ देख रही हो माते? मैं तो यहाँ हूँ आपके मुंह में।
ओ, तू तो अपने शरीर को छोटा करके मेरे मुंह से ही निकल गया।
क्या करता, मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था माते।
तुम धन्य हो हनुमान, इस परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही देवताओं ने मुझे भेजा था। जाओ, तुम्हारा कार्य सफल हो।
जय श्री राम। की कृपा से मैं लंका की सीमा तक तो पहुंच गया प्रभु, पर अब यहां से कहां जाऊं? यहां तो रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। ओह, तो ये है नगर द्वार। आप धन्य हैं प्रभु, अंततः आपने मुझे मार्ग पता ही दिया।
कौन है ये चोर?
हैं? कौन है जो मुझे देख रहा है?
मैं यहाँ की रक्षक हूँ, लंकिनी। मेरी अनुमति के बिना कोई भी लंका का ये द्वार पार नहीं कर सकता। बोल, कौन है तू?
मैं एक विशेष कार्य से जा रहा हूँ देवी, मुझे मत रोको।
तुम्हें पता नहीं कि तेरे जैसे चोर मेरा आहार है। आज तक इस द्वार को जिसने भी चोरी छिपे पार करने की सोची, उसे मैंने अपना आहार बनाया है। मैं तो ऐसे ही लोगों की प्रतीक्षा करती हूँ।
इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मुझे भी अपना आहार बनाओगी?
अरे बड़ा समझदार है तू तो।
तो ये ले, पहले तू ये खा, मेरी महामुष्टिका। चमत्कार है प्रभु, ये तो एक ही घूसे में लुढ़क गई। इससे अधिक कठिनाई तो नारियल तोड़ने में होती है।
अरे बाप रे, तू तो बड़ा शक्तिशाली है। ऐसा बलि तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे क्षमा करना, मैं तुझे पहचान नहीं सकी। अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, पर मरने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि रावण के अंत का समय आ गया है। अब तू जा और अपना कार्य सिद्ध कर।
जय श्री राम।
हनुमान के एक ही प्रहार से लंकनी के प्राण निकल गए। हनुमान श्री राम का स्मरण करके आगे बढ़े। नगर की सुंदरता देखकर वो चकित हो गए। इतना सुंदर नगर उन्होंने कभी नहीं देखा। जगह जगह सैनिक खड़े थे। नदी और झरनों के बीच कहीं सोने के कलश सजे थे तो कहीं सोने की मूर्तियां, जिसके बीच में से जाने वाले रास्ते रुपहले सर्पों से दिखते थे।
भैया, अभी तक वानर राज सुग्रीव के सैनिकों ने कोई सूचना नहीं दी। पता नहीं क्या होगा।
लंका पहुंचना और सीता को ढूंढना इतना सरल नहीं है लक्ष्मण।
इससे अच्छा तो ये होता कि मैं ही भाभी का पता लगाने जाता।
हम कहां कहां जाते लक्ष्मण, अभी तक तो हम उन्हें ढूंढते ही रहे।
प्रभु श्री राम की जय हो।
क्या सूचना है वानर राज?
पूर्व दिशा से हमारे सैनिक लौट आए हैं श्री राम, पर देवी सीता का कोई पता नहीं चला।
दक्षिण दिशा में जो सैनिक गए थे उनकी क्या सूचना है?
दक्षिण दिशा में जो सैनिक और वानरवीर गए हैं उनका नेतृत्व तो युवराज अंगद कर रहे हैं, उनसे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है प्रभु।
पर चिंता की कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि दक्षिण से अवश्य कोई सूचना आएगी।
अब कहां ढूंढूं मां देसी था को? कोना कोना तो छान मारा, रावण ने कहां रखा होगा उन्हें? अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? यहां तो कोई ऐसा भी नहीं है जिससे कोई सहायता मांगूं। हे प्रभु, 100 योजन समुद्र लांघने का क्या यही परिणाम है? यदि माथे का पता लगाए बिना लौट आऊं तो क्या मुंह दिखाऊंगा आपको मैं? मेरी लाज रखिए प्रभु, लाज रखिए।
श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम।
ये क्या, राक्षसों की इस लंका में प्रभु श्री राम के नाम का जाप? ये मेरा भ्रम तो नहीं? यहां कौन हो सकता है प्रभु का नाम लेने वाला? स्वर तो इसी घर से सुनाई पड़ रहे हैं, पर ये तो राजमहल है। कहीं कोई मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा?
आप इसी तरह राम नाम का जाप करते रहेंगे तो लंकेश फिर से आपको दंडित करेंगे।
पुण्य कार्य के लिए कोई किसी को दंडित करे तो वो स्वयं पाप का भागी होगा शर्मा।
पर ये बातें आप लंकेश को कैसे समझाएंगे? और यदि आप समझाने का प्रयास भी करेंगे तो वो नहीं समझेंगे।
देखो शर्मा, धर्म का कार्य डर कर नहीं किया जाता। मेरी आस्था जिसमें है मैं उसी का जाप करूंगा।
आस्था तो मेरी भी श्री राम में है, पर क्या करूं, हृदय से ही उन्हें स्मरण कर लेती हूं। एक दिन चोरी चोरी देवी सीता से मिलने गई, उनका दुख देखकर मेरा भी मन दुखी हो गया।
मैंने तो खुलकर इस कृत्य के लिए लंकेश का विरोध किया है और भविष्य में भी करता रहूंगा।
कहीं वो हमें लंका से निष्कासित ना कर दें, ऐसा हुआ तो हम कहां जाएंगे?
कहीं भी जाएं, पर मैं लंकेश के डर से सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ सकता। शर्मा, मुझसे यह अन्याय सहन नहीं होता और मैं मरते दम तक धर्म की ही बात करूंगा।
आप चाहे जो भी कर लें, पर लंकेश नहीं बदल सकता। मुझे तो कभी कभी भय होता है कि वो देवी सीता का वध न कर दे।
यदि वो ऐसा करते हैं तो उसी दिन उनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। और देखना, जिस दिन वो देवी सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध अशोक वाटिका से महल में ले आएंगे, उसी दिन उनके इस साम्राज्य का विनाश हो जाएगा।
ओ, ये तो सचमुच प्रभु के भक्त हैं। इनकी बातों से तो लग रहा है कि माता सीता अशोक वाटिका में है, किंतु ये वाटिका है कहां? ये स्त्रियां कहां जा रही हैं? मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। हो सकता है वाटिका में ही जा रही हूं।
हनुमान स्त्रियों का पीछा करते हुए एक वाटिका में पहुंचे। उन स्त्रियों की बातों से स्पष्ट हो गया था कि वो ही अशोक वाटिका है। अब समस्या थी देवी सीता को पहचानने की। वाटिका के एकांत में एक स्त्री के पीले वस्त्र और रो रो कर सूजी आंखें देखकर हनुमान को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये और कोई नहीं, स्वयं माता सीता ही है। वो एक पेड़ की डाल पर छिप कर बैठ गए।
देखी पवन सुत मन मुस्काए, और मन ही मन कीन्ही प्रणामा, कृतन सिया खुली रही देनी, कृतन सिया खुली रही देनी, बार बार ले रघुपति नाम। रामायण
मैं काल महावीर हनुमान ने पूरी लंका छान मारी, पर कहीं माता जानकी का कोई पता नहीं चला। फिर अचानक उन्हें कई स्त्रियों की आवाजें सुनाई दी। हनुमान सावधान हो गए और आवाज की दिशा में दृष्टि दौड़ाई। उन्होंने देखा कि एक अति सुंदर स्त्री बड़ी ही उदास भूमि पर बैठी हुई है और कई राक्षसी स्त्रियां उसे घेरे हुए हैं। हनुमान को समझते देर नहीं लगी कि ये स्त्री कोई और नहीं, माता जानकी ही है। वो उनके चरणों में शीश नवाने और उनका आशीर्वाद लेने की सोच ही रहे थे कि तभी रावण कई सैनिकों के साथ आता दिखाई पड़ा।
सावधान सीते, महाराज लंकेश तुम्हारे पास ही आ रहे हैं।
आंखें खोलो सीते, त्रिलोकपति लंकेश तुम्हारे सामने खड़ा है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे सामने है सीते। देखो हम तुम्हारे लिए कितना बहुमूल्य उपहार लाए हैं।
मुझे घृणा है तुमसे और तुम्हारे उपहारों से। जाओ यहां से, जाओ लंकेश, दूर हो जाओ।
तुम हमारी अशोक वाटिका में बैठकर हमें ही जाने का आदेश दे रही हो, पर चलो, इस अज्ञानता के लिए लंकेश तुम्हें क्षमा करता है। लो ये राजसी वस्त्र धारण करो, जीवन के समस्त सुखों का भोग करो। हमारी लंका तुम्हारी हो सकती है सीते, बस तुम इसे गले से लगा लो।
दुष्ट रावण, तू तो मेरी गदा के एक ही प्रहार से परलोक सिधार जाएगा। ना रहेगा तू और ना रहेगी तेरी लंका।
देखो सीते, प्रकृति भी तुम्हें मौन निमंत्रण दे रही है। फूलों की सुगंध से मधमाती हवाएं तुम्हें पुकार रही हैं, और ऐसे में तुम उदास बैठी हो। क्यों सीते, क्या तुम्हारे जीवन में सुखों का कोई महत्व नहीं है? क्या जीवन के प्रति कोई आकर्षण शेष नहीं है तुम्हें? ये मोह तुम्हारी प्रसन्नता छीन रहा है सीते, तुम्हें भ्रमित कर रहा है ये मोह। मेरी मानो सीते, इस पाखंड का त्याग कर हमारे महल में आओ, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा।
दशानन, बंद करो ये प्रपंच। मेरे घावों पर और नमक मत डालो। मेरी हर एक सांस अपने पति के लिए है। तेरे अपवित्र विचार मेरी भावनाओं को कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं।
जिस वनवासी पति में तुम्हारी इतनी आस्था है, यदि वो ही ना रहे तो तुम्हारा क्या होगा सीते?
चुप रहो दशानन, तुम उन्हें नहीं जानते। संसार की कोई शक्ति उनका सामना नहीं कर सकती।
हम तुम्हें विचार करने के लिए एक मास का समय और देते हैं, फिर भी तुम नहीं मानी तो हमें बल प्रयोग के लिए विवश होना पड़ेगा।
एक माह तो बहुत लंबा समय है दशानन, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब तुझे विवश होकर प्रभु श्री राम के सम्मुख अपने प्राणों की भीख मांगनी पड़ेगी। अरे, अब ये राक्षसियां कहां आगे बढ़ रही हैं? मुझे माता से मिलने का समय कब मिलेगा प्रभु? इन स्त्रियों से भला मैं ब्रह्मचारी कैसे निपट सकता हूं?
लंकेश ने तुम्हें एक महीने का समय दिया है सीता, परंतु ये एक महीना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। हम तुम्हें शांति से नहीं जीने देंगे।
तेरी भलाई इसी में है कि तू लंकेश की बात मान जा, नहीं तो एक माह के पहले ही हम तुझे मार डालेंगे।
श्री राम के बिना मेरे इस जीवन का महत्व ही क्या है सखियों? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा यदि तुम हमें मार डालो। इससे मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी।
अरे, तुझे तो मृत्यु का भी भय नहीं है?
मृत्यु से तो वो डरता है जिसे जीवन से मोह होता है। मैं तो यहाँ मृत सी ही हूँ। श्री राम से दूर यह अशोक वाटिका मेरे लिए शमशान जैसी ही है।
नहीं माते, नहीं, ऐसा मत बोलिए। प्रभु श्री राम के होते शक्ति स्वरूप सीता को कुछ नहीं हो सकता।
बोल, तू लंकेश की बात मानती है या अभी इस खड़क से तुझे यमलोक पहुंचा दूं? शीघ्र ही लंकेश तेरे पति को भी वहीं भेज देंगे।
यदि तुम स्त्री नहीं होती तो मैं अभी तुम सबको एक साथ यमपुरी की यात्रा करा देता। हे प्रभु, अब और सहन नहीं होता, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें।
चलो सखियों, महाराज रावण की मुख्य गुप्तचरी आ रही है।
ये सुनते ही हनुमान भी भयभीत हो गए। अब ये रावण की मुख्य गुप्तचरी कौन थी? वो कौन सी नई मुसीबत ढाने वाली थी माता सीता पर?
अब ये कौन है प्रभु? कहां तो मैंने इस संकट से मुक्ति का मार्ग मांगा था और आपने? ये नारियां तो साक्षात संकटों की अवतार लग रही हैं।
इस रावण ने तो स्त्रियों की लंबी चौड़ी सेना बना रखी है, जिधर देखो नारी ही नारी, और मैं ठहरा ब्रह्मचारी, कहां फंसा दिया, कहीं यहां चंद्रमा कन्या राशि में तो नहीं है, कहीं ये भयानक राक्षसी माता सीता को, नहीं नहीं, मैं माता सीता को कुछ नहीं होने दूंगा।
अरे क्या हो रहा है ये, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है, जाओ तुम सब यहाँ से जाओ, जाकर वाटिका की देख रेख करो, सीता के लिए तो मैं अकेले ही बहुत हूँ, अब खड़े खड़े तुम सब मुंह क्या देख रही हो, जाओ।
त्रिजटा, आप हमें थोड़ा सा विष दे दें बस।
ऐसे घबराते नहीं सीता बेटी, हम तुम्हें विष नहीं राम नाम का अमृत पान करवाएंगे।
ये लंकापति की अब कौन सी नई माया है, लंका में हमारे प्रभु के नाम का अमृत, विश्वास नहीं होता।
विश्वास का दूसरा नाम ही राम है बेटी, प्रभु राम केवल तुम्हारे नहीं, वो तो संपूर्ण संसार के हैं। तुम तनिक भी चिंता ना करो, कोई भी संकट हो तो हमें बुला लेना।
धन्य है प्रभु आप, धन्य है, आपकी लीला अपरंपार है, आपके भक्त इस लंका में भी। देवी त्रिजटा, तुम्हारी श्री राम भक्ति से हमारा मन गदगद हो गया। जय श्री राम, आपने तो हमें माता सीता से मिलने का मार्ग भी बता दिया, पर अचानक उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं।
अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई, कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया, ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी, पर यहाँ तो कोई है भी नहीं जिससे इसका रहस्य जान सकूं।
हाँ यही अवसर है, अब नीचे कूदता हूँ।
कौन हो तुम, क्या ये मुद्रिका तुमने ही?
पहले मुझे आशीर्वाद दे माते, मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ, मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है।
किंतु तुम जो कह रहे हो उसे सच कैसे मान लूं?
माते आपके पास तो अंतर्दृष्टि है, मेरा सच आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है। आपकी खोज में हमारे सैकड़ों सैनिक चारों दिशाओं में फैले हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। माते ये मुद्रिका प्रभु ने स्वयं मुझे दी है, जिससे आपको मैं अपना परिचय दे सकूं।
क्या क्या मेरे स्वामी ने मुझे याद किया है, क्या वो मेरे लिए चिंतित है?
ये भी कोई पूछने की बात है माते, प्रभु तो सोते जागते आपके ही नाम की रट लगाए करते हैं, जब भी एकांत मिलता है वो आपकी याद में रो लेते हैं, उनकी स्थिति देखकर तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं माते।
बस करो हनुमान, बस करो, मैं और नहीं सुन सकती।
आप चिंता ना करें माते, अब तक आपका पता नहीं चल सका था, इसीलिए प्रभु शांत थे, मैं जैसे ही आपकी सूचना दूंगा वो आपको मुक्त करा लेंगे।
किंतु ये कैसे संभव है, उनके पास तो सेना भी नहीं है, रावण के बल का सामना करने के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए।
आप उसकी चिंता ना करें माते, उनके पास जो सेना है उसका एक एक सैनिक 100-100 सेनाओं का अंत कर सकता है, मैं तो प्रभु का साधारण सेवक हूं, पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अकेला ही इस लंका का विनाश कर सकता हूं।
किंतु स्वामी के पास सेना कहां से आई,
उनके साथ तो केवल उनके अनुज लक्ष्मण थे।
प्रभु के सेवक और सखा सुग्रीव ने उन्हें अपनी सेना दी है माते।
पर क्यों? उन्होंने अपनी पूरी सेना उन्हें क्यों दे दी?
उनकी सहायता करना तो किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है, और वानर राज सुग्रीव को तो प्रभु ने भारी संकट से उबारा है माते।
ओ भाग्य, आज का दिन मेरे लिए कितना शुभ है हनुमान। तुम्हारे आने से हमें नया जीवन मिल गया है। यहाँ तो
बस बस माते, अब और कुछ न कहें। मैंने सब कुछ देखा है।
हनुमान, जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे।
माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान द्रवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं फड़क उठी, किंतु वो विवश थे, उनके हाथ बंधे थे। श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने को ही कहा था, रावण को दंड देने को नहीं।
जब संदेशा दियो हनुमान, तब सिया दुख सब दूर भयो। और माता अशुभन मोती जोरी, और माता अशुभन मोती जोरी, भेंट हार श्री राम की यो।
महाबली हनुमान देवी सीता को शीघ्र मुक्ति का आश्वासन देकर चलने को तैयार हुए, किंतु उसी समय उन्हें लगा कि जिस प्रकार वो प्रभु श्री राम से मुद्रिका लेकर आए थे, उसी प्रकार माता सीता से भी कोई निशानी ले। बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने माता सीता से कहा,
माते, यदि आप उचित समझें तो प्रभु श्री राम की तरह आप भी कोई निशानी मुझे दें, जिससे मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मुझे आपके पावन दर्शन हुए। आप चुप क्यों हो गई माते? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया?
नहीं हनुमान, मैं स्वयं ये सोच रही थी, पर क्या दूं, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है।
ऐसा ना कहें माते, क्या नहीं है आपके पास?
अरे हाँ, ये चूड़ामणि तो है, स्वामी इसे देखते ही पहचान लेंगे। ये लो हनुमान।
जय श्री राम। इसे मैं अपनी कमर में बांध लेता हूँ, ये सुरक्षित रहेगी। अब आप मुझे आशीर्वाद दे माते कि मैं जल्द से जल्द प्रभु के पास पहुंच सकूं।
तुम्हारे जैसे महावीर का मार्ग निर्विघ्न ही होगा। मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है हनुमान।
अरे, यहां तो बहुत सारे राक्षस हैं। मुझे इनकी वीरता की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रभु को बताना भी तो होगा कि राक्षस कितने शक्तिशाली हैं। किंतु ये परीक्षा कैसे है? यदि मैं इस वाटिका को उजाड़ दूं, तो ये सब मुझे पकड़ने अवश्य आएंगे। जय श्री राम।
अरे, ये कौन है? देखते क्या हो, रोको उसे। वानर, तेरा ये दुस्साहस।
मैं तो बड़े प्रेम से फल खा रहा हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो भाई?
इसे तो हंसी सूझ रही है। खेल लो इसे। मेरे कोई लंकेश को सूचना दो। जल्दी करो, जल्दी।
कहा ना, मुझे मत रोको भाई, चुपचाप फल खाने दो, बहुत भूख लगी है।
हनुमान के गदा प्रहार से अनगिनत राक्षस मारे गए। राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। पूरी लंका में हाहाकार हो गया। महाबली हनुमान ने राक्षसों की शक्ति का अनुमान तो लगा लिया, किंतु अभी रावण की शक्ति का अनुमान लगाना शेष था। इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका में ऐसा उत्पात मचाया कि स्वयं लंकापति रावण उनसे मिलने को व्याकुल उठे। आखिर वो कौन महाबली वानर है जो दशानन की नगरी में घुसकर उसे चुनौती दे रहा है? महावीर हनुमान को भला कौन सा बंधन बांध सकता था? ये तो तभी हो सकता था जब वो स्वयं ही बंधकर लंकेश्वर के दरबार में पहुंच जाए।
लंकापति की जय। हमारे वीर उस महाबली वानर को बंदी बनाकर ला रहे हैं।
इस वानर को तुम महाबली कह रहे थे सेनापति, देखो कहीं तुमसे पहचानने में भूल तो नहीं हुई। इसे तो कोई भी चुटकियों में मसल देगा।
आपने ठीक कहा महाराज, मैं साधारण वानर ही हूं, पर जिस पर श्री राम का आशीर्वाद हो वो साधारण नहीं रहता।
अच्छा, तो तुम उस राम की शक्ति के बल पर सीता को खोजते हुए विशाल सागर पार करके लंका चले आए?
नहीं, लंकापति, ऐसा कहकर प्रभु राम का अपमान मत कीजिए। दरअसल मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, लंका में सुंदर फल दिखे तो सागर पार करके यहाँ चला आया। यदि श्री राम का आदेश होता तो मैं तो अब तक माता सीता को अपने साथ लेकर आपके सीने पर लात रखता हुआ अयोध्या उड़ गया होता। अरे 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 लंकाधिपति, आप तो इतना ही सुनकर भय से कांपने लगे। अभी मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि श्री राम के बाण आपके प्राण लेने के लिए कैसे व्याकुल हो रहे हैं।
वानर!
प्रभु राम की कृपा से इस वानर का एक नाम भी है महाराज, हनुमान। हनुमान, और ये हनुमान आपको सलाह देता है कि अभी भी माता सीता को सम्मान सहित श्री राम को लौटाकर प्रभु चरणों में अपना सिर रख दे।
लंकापति रावण का सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका,
और झुकेगा भी नहीं महाराज, क्योंकि झुकने के लिए जीवित रहना भी तो आवश्यक है।
हनुमान की बातों ने रावण के क्रोध की अग्नि में घी का काम किया। उसे लगा कि हनुमान उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। उसने अपना विशाल खड़ग खींच लिया और दांत पीसता हुआ हनुमान की ओर बढ़ा।
बस वानर बस, अब मैं तुझे दिखाता हूं दशानन की शक्ति। उस दशानन की शक्ति जिसके नाम से ये ब्रह्मांड थरथराता है, जिसकी कल्पना से इंद्र डरकर पीले पड़ जाते हैं, क्रोध के साक्षात स्वरूप शनि को जिसने पांव तले कुचल रखा है, दिन और रात जिसके दास है। और याद रख, यदि तेरे प्रभु राम को मैंने चींटी की तरह अपने इन्हीं पांव से नहीं मसल दिया तो मेरा नाम दशानन नहीं।
महाराज, महाराज, वीर शोभा नहीं देता। हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि श्री राम से बैर लेना आपके हित में नहीं।
अपनी जीवा को संभाल दुष्ट, तेरे सर पर काल बंडरा रहा है। पिताश्री, अब मेरी तलवार इसके सर को धड़ से अलग करने के बाद ही शांत होगी। पुकार ले अपने राम को।
पुकार, क्या कर बता ले वो तुझे।
ठहरो मेघा, ठहर जा।
चाचा श्री, अपने अधिकार की सीमा का उल्लंघन किया है आपने। मेरा हाथ पकड़ने का साहस कैसे हुआ आपका?
तुम अभी होश में नहीं हो मेघनाथ, इसलिए तुम्हें रोकना हमारी व्यवस्था है।
क्या व्यवस्था है आपकी? क्या ये आपका कोई संबंधी है? क्या भूल गए आप कि दुष्ट ने अक्षय कुमार का वध किया है?
कुछ नहीं भूला मैं, कुछ नहीं। पर तुम ये कैसे भूल रहे हो कि किसी भी दूत का वध नहीं किया जाता? ये नीति के विरुद्ध है।
मृत्यु का दंड मृत्यु दंड होता है, यही हमारी नीति है। आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए।
नहीं,
छोड़िए मुझे।
मेरी बात समझने का प्रयास करो मेघनाथ। महाराज, समझाइए मेघनाथ को, ये अनर्थ रोकिए।
शांत मेघनाथ, शांत हो जाओ।
नहीं पिताश्री, मुझे छोड़िए चाचाश्री।
मेघनाथ, हम इसे कोई दूसरा दंड देंगे।
और वो दंड मृत्यु से भी भयावह होगा। इसने मेरे प्रिय पुत्र को मारा है, मेरी आत्मा पर आघात किया है इसने। इसके इस कार्य के लिए मैं इसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। वानर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है ना, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो, ये स्वयं जलकर भस्म हो जाएगा। आदेश का पालन हो।
महारानी, महारानी, महारानी मंदोदरी,
क्या हुआ? तुम ऐसे भागती हुई क्यों आ रही हो? क्या फिर कोई अशुभ सूचना मिली है?
महारानी, राजकुमार मेघनाथ उस उत्पाती वानर को बंदी बनाकर द्वार में ले आए थे।
फिर क्या हुआ?
महाराज ने उस वानर को ऐसा दंड दिया है कि वो जीते जी मर जाएगा।
कैसा दंड?
उसकी पूंछ में आग लगाने का दंड। पर जाने कैसी उसकी पूंछ लंबी ही होती जा रही है, और रुई और ढेरों ढेर कपड़े उसकी पूंछ में बांधे जा रहे हैं। उसकी दुर्दशा देखने के लिए महल के आसपास आंखें फाड़े लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है।
इससे क्या मेरा कुमार जीवित हो जाएगा? क्या लौट आएगा मेरा कुमार? इतना कुछ हो जाने के बाद भी महाराज भूल पर भूल किए जा रहे हैं।
मंदोदरी को रावण द्वारा हनुमान को दंड देना ठीक नहीं लगा, किंतु लंका के राक्षस खुश थे। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर तेल डाल दिया, फिर सबने मिलकर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि की भयानक लपटें आकाश छूने लगे। हनुमान बिना किसी चिंता के उछलते कूदते इधर उधर दौड़ने भागने लगे।
कपि के ममता पूछ पर सब ही कहा समझाई, तेल बोरी और बांधी पतीली, तेल बोरी और बांधी पतीली, पुनी पावक देहु लगाई।
लंकापति रावण के आदेश से महावीर हनुमान की विशाल पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान नहीं चाहते तो क्या रावण कभी ऐसा कर सकता था? किंतु उन्होंने अपनी पूंछ की अग्नि से ही पूरी लंका को स्वाहा करने की योजना बना ली थी। जब पूंछ में आग लगाई गई तो वो एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की डाली राजमहल की ओर झुकी हुई थी। उस डाली से कूदकर वो रनिवास में पहुंच गए। देखते ही देखते सारा राजमहल धू धू कर जल उठा। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। राक्षस चूहों की तरह अपने अपने प्राण बचाकर भागने लगे।
गिरते जा रहे हैं महाराज।
धिक्कार है तुम सब पर जो एक वानर को नहीं पकड़ पा रहे हो। धिक्कार है तुम सबकी वीरता पर। जाओ पकड़ो उसे और होम कर दो इसी अग्नि में, भस्म कर दो उसे। जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम।
ऐसा भयानक कोई वानर नहीं हो सकता। वानर में इतनी शक्ति कहां से आ गई?
अरे तो पहले ही कहा था कि वानर नहीं कोई देवता है।
अरे भागो यहां से। वो देखो अग्नि की ज्वाला यहां तक पहुंच गई है।
पूरी लंका जलकर राख होती जा रही थी। सारी नगरी में केवल विभीषण का ही महल ऐसा था जो इस भीषण अग्नि से बचा हुआ था। लंका को भस्म करने के बाद महाबली हनुमान ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की अग्नि बुझाई। पर दूसरी ओर अंगद अभी तक हनुमान के न लौटने के कारण चिंतित थे।
तात जामवंत, मेरी चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं हनुमान का क्या हुआ।
हाँ, चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर मुझे विश्वास है कि हनुमान सफल होकर ही लौटेंगे।
आपके इस विश्वास का कोई आधार नहीं है तात।
मैं हनुमान को बालपन से जानता हूं युवराज। वो अब तक कभी असफल नहीं हुआ, कभी भी नहीं।
हे ईश्वर, इस बार भी वो सफल है। सच तो ये है तात कि हनुमान के बिना हम अधूरे हो गए हैं। कोई कुछ नहीं सोच पाता था तो हनुमान कुछ न कुछ अवश्य सोच लेते थे, पर अब
मैं समझ रहा हूं युवराज, हनुमान की शक्ति को कौन नहीं जानता।
जब तक वो थे तब तक हमने उनके संबंध में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। मुझे आशंका हो रही है कि यदि राक्षसों ने उन्हें बंदी बना लिया तो हमारा क्या होगा।
आप ऐसी अशुभ बातें ना सोचे।
मैं जानता हूं तात, पर यदि अशुभ हुआ तो हमें क्या करना होगा, ये तो हमें अभी ही सोचना होगा ना।
यदि हनुमान को कुछ हो गया तो हम यही अपनी देह का त्याग कर देंगे, लौटकर किष्किंधा नहीं जाएंगे।
नहीं तात, नहीं। यदि कोई अनहोनी हुई तो मैं स्वयं समुद्र पार करके लंका जाऊंगा और माता वैदेही का पता लगाऊंगा।
धन्य है युवराज, आप धन्य हैं। हमें आज ये संकल्प करना होगा कि किसी भी स्थिति में हम महाराज सुग्रीव या श्री राम से मुंह कभी नहीं छिपाएंगे।
मैं तो ये कहता हूँ कि हमें प्रण करना चाहिए कि हम सब किसी भी स्थिति में देवी सीता का पता लगाएंगे और सफल होकर ही किष्किंधा लौटेंगे।
सचमुच हमें ऐसा ही संकल्प करना चाहिए। तुम सबके उत्साह से हम अवश्य ही विजयी होकर लौटेंगे।
युवराज अंगद की
जय।
युवराज अंगद की
जय।
शांत शांत हो जाओ। वो देखो समुद्र में कैसी तरंगे उठ रही हैं। उधर देखिए ताज जामवंत।
लगता है हनुमान चले आ रहे हैं।
हाँ, वो हनुमान ही है। देखिए वो कैसे अपनी भुजाएं लहराते हुए आ रहे हैं।
हनुमान सकुशल लौट आए। उनके उत्साह से किसी को भी ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी कि उन्हें सफलता मिली या नहीं। अपने साथियों को देखते ही वो उछल पड़े और श्री राम की जय जयकार करने लगे। अंगद और जामवंत ने भाव विभोर होकर उन्हें गले से लगा लिया।
प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।
अब विस्तार से पूरा हाल सुनाइए हनुमान।
ये देखिए युवराज,
ये क्या है?
देवी सीता से मिलकर आने का प्रमाण,
अर्थात ये चूड़ामणि।
हाँ, ये माता सीता की ही है युवराज। प्रभु श्री राम ने प्रमाण के रूप में अपनी मुद्रिका दी थी। मैं माता से प्रमाण के रूप में ये चूड़ामणि ले आया।
महावीर हनुमान की, बजरंग बली की।
अरे रुकिए, अभी और सुनिए। मैंने रावण की लंका जला दी, उसकी अशोक वाटिका उजाड़ दी, कई राक्षसों का वध कर दिया, मेरे हाथों तो रावण का एक बेटा भी मर गया।
आपने हमारी लाज रख ली हनुमान, हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हम इसी क्षण किष्किंधा चल के श्री राम को ये शुभ समाचार सुनाएंगे।
किष्किंधा सैकड़ों कोस दूर था, किंतु अंगद की टोली अपनी सफलता से इतनी प्रसन्न थी कि वो दिन रात यात्रा कर रही थी। वो ना रात में सोते थे, ना ही दिन में विश्राम करते थे। खाने पीने की तो किसी को सुध ही नहीं थी। सभी श्री राम को शुभ समाचार देने के लिए अधीर हो रहे थे। तभी किष्किंधा पर्वत दिखाई पड़ा। पास ही सुग्रीव का विशाल उद्यान था। सभी ने उद्यान में जी भर कर फल खाए। मालियों के मना करने पर भी कोई नहीं रुका। उद्यान के प्रहरी भाग भाग कर सुग्रीव के पास पहुंचे और अंगद और उसके दल के उत्पात की पूरी कथा कह सुनाई।
नहीं 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 पुत्र सुग्रीव, अब मुझसे तुम्हारे उद्यान की रखवाली नहीं हो सकती। तुम्हारे उद्यान पर तो कोई ध्यान रहता नहीं है। लूटने वाले आते हैं, लूट कर चले जाते हैं और हम मुंह देखते रहते हैं।
अरे आप इतने क्रोध में क्यों है मामा? अचानक लाल पीले क्यों हो रहे हो? थोड़ा शांत होकर तो बताइए।
सम्राट बाली के समय की तो बात ही कुछ और थी। उनके समय में मेरे मधुबन में कोई वानर मेरी अनुमति के बिना पैर नहीं रख सकता था। स्वयं बाली साल में एक दो बार आते थे और मेरी पीठ थपथपा कर जाते थे। बाली के मरते ही तुम्हारे राज्य के वानरों ने उत्पात शुरू कर दिया है।
किंतु मामा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा।
आज तेरे अंगद, हनुमान, जामवंत और कई दूसरे वानरों ने उद्यान में घुसकर सारे फल तोड़ लिए, कई वृक्षों को उखाड़ दिया। मैं रोकता रहा किंतु कोई मेरी बात सुनने वाला हो तब ना।
कैसी बातें करते हैं मामा। अंगद और हनुमान तो देवी सीता का पता लगाने गए हैं, वे मधुबन में कैसे आ सकते हैं?
तो क्या तेरा मामा दधीमुख झूठ बोल रहा है पुत्र?
नहीं मामा, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि आपको भ्रम हुआ है। अभी अभी तारा भी अंगद के बारे में चिंता कर रही थी।
ये तुम्हारा भ्रम है पुत्र कि अंगद और हनुमान सीता का पता लगाने के लिए गए हैं। अरे वो तो वनों वनों में घूम घूम कर अपने दिल बिता रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो आओ चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ।
मामा, मधुबन के वनपाल तो आप हैं, सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया है। यदि वे पुनः दिखाई पड़े तो आप उन्हें जो दंड देना चाहे दें।
ठीक है पुत्र, परंतु मेरे कठोर दंड के कारण यदि उनका अंग भंग हो गया तो फिर मुझसे कुछ मत कहना, मैं जा रहा हूँ।
महाराज श्री रामचंद्र की जय।
बड़े प्रसन्न लग रहे हैं वानरराज, क्या बात है?
श्री राम, मुझे जो समाचार मिले हैं उससे लगता है कि देवी सीता का पता लग गया है।
क्या सचमुच कोई शुभ सूचना मिली है? क्या अंगद और हनुमान लौट आए हैं?
नहीं नहीं श्री राम, वे मेरे पास लौट कर नहीं आए, किंतु सूचना मिली है कि उन्होंने मधुवन में भारी उत्पात मचाया है। ये उनके उत्साह की सूचना है, बस अभी वो हमारे पास आने ही वाले होंगे।
वानरराज,
क्या सचमुच आपको लगता है कि अंगद अपने कार्य में सफल हुए हैं?
कुमार लक्ष्मण, यदि अंगद को सफलता नहीं मिली होती तो वे लौटकर मधुवन तक नहीं आते। मैंने पहले ही कह दिया था कि असफल होने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा।
अपने मामा ददीमुख की बातें सुनकर सुग्रीव को आभास हो गया था कि हो न हो युवराज अंगद सीता का पता लगा चुके हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को अब केवल अंगद के दल के आने की प्रतीक्षा थी।
हर्षे सब दिलों की हनुमाना, नूतन जन्म कपी तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन है श्री राम चंद्र कर काजा।
रामायण मैं काल हूं। वानर राज सुग्रीव ने अपने सैनिकों को देवी सीता का पता लगाने का जो समय दिया था वो बीत चुका था। अब उनकी वापसी की प्रतीक्षा थी। इसी बीच उन्हें अंगद के दल के आने की सूचना मधुवन के रखवाले से मिली और सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण को पहले ही शुभ समाचार बता दिया। तभी अंगद का दल खुशी से नाचता हुआ उसी ओर आता दिखाई दिया।
देखिए श्री राम, देखिए, सारा दल किलकारियां भरता हुआ भागा चला आ रहा है। उनका यह उत्साह देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देवी सीता का पता चल चुका है। अंगद के दल की प्रत्येक क्रिया शुभ सूचना दे रही है। देखिए देखिए, वो प्रभु के जयकार करते चले आ रहे हैं।
जब तक वो शुभ सूचना ना दे तब तक हम क्या कह सकते हैं वानर राज?
अंगद के दल की प्रत्येक क्रिया शुभ सूचना दे रही है सौमित्र। देखिए, वो प्रभु की जय जयकार करते चले आ रहे हैं।
बोलो प्रभु श्री राम की।
पुत्र अंगद, हम तुम सबके सफलता से अति प्रसन्न हैं। श्री राम की कृपा से तुम लोगों का जीवन सदा हर्ष और उत्साह से भरा रहे। बताओ, कहाँ है देवी सीता?
वे कुशल तो है ना? राक्षसों ने उनका उनका कोई आयत तो नहीं किया ना युवराज अंगद?
प्रभु, आप समझ रहे होंगे कि देवी सीता का पता मैंने लगाया है, किंतु ऐसी बात नहीं है। उनका पता लगाने वाला तो ये आपके सामने चुपचाप खड़ा है प्रभु।
जय श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है, किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं।
परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी?
इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है।
चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोलेन्ही। नाथ युगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी।
ये तो सचमुच जानकी का चूड़ामणि है। हनुमान, तुमने ये चूड़ामणि दिखाकर सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे परम प्रिय हो। तुम नहीं जानते हनुमान, इस चूड़ामणि को देखकर मुझे नया जीवन मिल गया है। जब हमारे चारों ओर अंधेरा था तब तुमने ये चूड़ामणि दिखाकर हमें उजाले से भर दिया। हनुमान, उजाले से भर दिया।
इस कार्य के लिए हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे हनुमान। अब विस्तार से बताओ कि लंका में क्या क्या हुआ।
प्रभु, माता सीता की खोज में मैंने पूरी लंका छान मारी, पर कहीं उनका कोई संकेत नहीं मिल पा रहा था। पर अचानक आधी रात में मुझे लगा कि कोई आपके नाम का जाप कर रहा है। मैं पास गया और उनकी बातें सुनी तो लगा कि वे आपके भक्त हैं। उनकी बातों से मैंने जाना कि माते जानकी अशोक वाटिका में है। फिर किसी प्रकार मैं अशोक वाटिका पहुंचा और एक पेड़ पर बैठकर वाटिका का निरीक्षण करने लगा, और तभी मुझे माता जानकी के दर्शन हुए। रात दिन रो रो कर उनके आंसू भी सूख चुके थे प्रभु। माथे पर तिलक की चमक फीकी पड़ गई थी, मुख भी मलिन हो गया था।
बस करो हनुमान, बस करो, मुझसे अपनी जानकी का और दुख नहीं सुना चाहता। बस बस तुम ये बताओ कि हम उन्हें वहां से कैसे मुक्त करा सकते हैं, कैसे। चुप क्यों हो हनुमान? क्या सीता की मुक्ति संभव नहीं?
आप एक कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? यदि आपका आदेश होता तो मैं माता को लेकर ही वापस आता, और फिर माता का सम्मान इसी में है कि आप स्वयं उन्हें मुक्त कराएं।
किंतु अब हमें क्या करना है?
मुझ मूर्ख से ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं प्रभु?
मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं हनुमान, और ये भी जानता हूं कि उस दुष्ट रावण से उनकी मुक्ति का कार्य तो मुझे ही करना होगा।
भैया चलिए, अब बातों के लिए समय नहीं है। वानर राज, आप अपनी सेना तैयार कीजिए, युद्ध के लिए अब मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। अब जब तक लंकेश रावण का वध नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा।
जहां सीता की सूचना पाकर राम भावुक हो उठे थे, वहीं लक्ष्मण क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने गरजते हुए अपना धनुष उठा लिया। उनका वश चलता तो वो उसी क्षण रावण पर आक्रमण कर देते, पर क्या लंका विजय आसान थी?
लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं वानर राज सुग्रीव, अब हमें युद्ध के लिए शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए।
अवश्य श्री राम, अब हम देवी सीता को आपके सम्मुख उपस्थित करके ही दम लेंगे। मैं सूर्य पुत्र किष्किंधापति सुग्रीव धरती आकाश ग्रह और नक्षत्रों को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि देवी सीता की प्राप्ति किए बिना किष्किंधा महल में पैर नहीं रखूंगा। हनुमान, यथाशीघ्र सेना की व्यवस्था करो।
जैसी आज्ञा वानर राज।
शीघ्र ही श्री राम ने वानरों की भारी सेना जुटा ली। सेना इतनी विशाल हो चुकी थी कि उनकी ओर छोर का पता नहीं चल रहा। और जब पूरी सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो अचानक सब चिंता में पड़ गए कि ये सेना विशाल सागर को पार कैसे करेगी। किंतु श्री राम की अद्भुत शक्ति पर सबका अटूट विश्वास था, और वही विश्वास उनका संबल था।
प्रभु, हम महासागर के किनारे तक तो पहुंच आए हैं, अब यहां से लंका की दूरी बस 100 योजन है।
किंतु बिना समुद्र देव की सहायता के हम इस दूरी को कैसे पार कर सकेंगे?
उड़कर समुद्र पार करने की कला तो बस हनुमान के पास ही है श्री राम।
चिंता ना करें, समुद्र देव की सहायता से ये कार्य अवश्य हो जाएगा।
हे समुद्र देव, हमारे इस महान उद्देश्य में आप सहभागी बने, हमें उस पार जाने का मार्ग दे समुद्र देव, धर्म की रक्षा में हमारा साथ दे। कृपा करें देव, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा उद्देश्य पूर्ण करें।
प्रभु, समुद्र देव तो और भी भयानक रूप धारण करते जा रहे हैं।
मेरी प्रार्थना स्वीकार करें समुद्र देव, न्याय के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे।
हे ईश्वर, ये हो क्या रहा है? अनर्थ, घोर अनर्थ है ये।
प्रभु कब से समुद्र देव के समक्ष सर झुकाकर विनती कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं।
पर जैसे समुद्र देव तो उन्हें चुनौती देने पर तुले हुए।
हाँ,
जैसे उनके सामने झुकना ही नहीं चाहते। बस भैया बस, जैसा देवता होता है उसकी वैसी ही पूजा होनी चाहिए। समुद्र देव ऐसे नहीं मानने वाले, आप कहे तो मैं अभी इसी क्षण इन्हें सत्य का ज्ञान करा दूं।
नहीं लक्ष्मण, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मेरा धनुष लाओ। अब मैं इनसे उस भाषा में बात करूंगा जिसे ये समझ सकते हैं।
बस समुद्र देव बस, तुम राम के धैर्य की जितनी परीक्षा ले सकते थे ले चुके। अब हम और विनती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मार्ग देने की प्रार्थना, क्योंकि तुम हमारी प्रार्थना के योग्य ही नहीं हो। यदि तुमने हमारी विनम्रता को हमारी दुर्बलता समझा है तो तुम्हें इस भूल का दंड अवश्य मिलेगा। सुन लो समुद्र देव, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हारे विनाश का उद्घोष करता हूँ, और अपने इस विनाश का कारण तुम स्वयं होगे, क्योंकि तुमने अपने अहंकार में सिर्फ मेरा ही नहीं सारी मानवता का उपहास किया है, और तुम्हारे इस उपहास का बस एक ही उत्तर है, और वो है तुम्हारा विनाश। हे शिव, हे देवाधिदेव, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हें साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने बाण के एक ही प्रहार से समुद्र का नाश कर दूंगा, जल की एक एक बूंद को अपने क्रोध की प्रचंड ज्वाला में भस्म कर दूंगा। जिन उछाल खाती लहरों पर इन्हें गर्व है, उस गर्व को मैं पल भर में चूर चूर कर दूंगा। जिस शक्ति के कारण आज मानवता का अपमान हुआ है, मैं उस शक्ति को सदा सदा के लिए अंत कर दूंगा। जो घमंड मुझे मेरा कर्तव्य करने से रोकता है, उस घमंड को खंड खंड कर देगा ये दशरथ नंदन राम।
क्षमा करें रघुनंदन, क्षमा करें। मैं समुद्र देव आपके चरणों का दास हूं, आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूं। यदि मैं सूख जाऊंगा तो उन प्राणियों का क्या होगा जो मेरी शरण में है? उन्होंने ऐसी कौन सी भूल की है प्रभु, उन्हें जीवन दान दे और मुझे भी क्षमा कर दे। प्रभु मुझे भी क्षमा कर दे।
ठीक है देव, मैं आप पर प्रहार नहीं करूंगा, पर आपको उस पार लंका जाने का मार्ग बताऊंगा।
आपकी सेवा में नल और नील जैसे योग्य सेवक है प्रभु, मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं। आपकी कृपा से ये अवश्य ही पूरी सेना को सागर पार करा सकेंगे।
प्रभु श्री राम, यदि सागर को इस किनारे से उस किनारे तक बांध दिया जाए तो हम बिना किसी कष्ट के उस पार जा सकते हैं।
क्या हम सागर बांध सकेंगे?
काम तो कठिन है, किंतु हम प्रभु के भी काम ना आ सकें तो इस जीवन का क्या अर्थ है?
किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम लोग ये कार्य करोगे कैसे?
हम पत्थरों से सेतु बनाएंगे प्रभु, आपकी कृपा से हम पत्थरों को काट काट कर ऐसा बना देंगे कि वो पानी में तैरते रहे।
तुम धन्य हो नल और नील, तुम धन्य हो। चलो अब कार्य आरंभ करो।
तो आओ साथियों, प्रभु का नाम लेकर काम शुरू करो। बोलो श्री राम की जय।
समुद्र पर पुल बांधना असंभव कार्य था, पर प्रभु की इच्छा और उस इच्छा से भी बढ़कर प्रभु भक्तों की आस्था ने उस असंभव को भी संभव कर दिखाया। वो आस्था कुछ भी कर सकती, उसी भक्ति और आस्था का बल था जो छोटे और साधारण से दिखने वाले जीव भी त्रिलोक विजेता दशानन को चुनौती दे सके।
माने से पाथर प्रभु भय, नाही तो प्रभु भी पाथर ज्ञान धन और बल सब झूठा साचे प्रेम भक्ति के आखर।
पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन।
रामा।